ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज श्रीमद् भागवतम से आठवां स्कंध शुरू हो रहा है। आठवां स्कंध खत्म हुआ, आठवां स्कंध शुरू हो रहा है। तो इस अध्याय का नाम है ब्रह्मांड के प्रशासक और यहाँ पे श्लोक संख्या 2 लिखी हुई है। तो प्रभु जी, ये जो महाराचार्य पढ़ते हैं सीधा तो श्लोक संख्या 1 मैं पढ़ता हूँ और 2 फिर हम इकट्ठे पढ़ेंगे। श्री राजोवाच स्वयंभुवस्य हे गुरो वशोऽहं विस्तारच्युतः यत्र विश्वसजां सर्गो मनून्यान वदस्वनः। इसका अनुवाद है, राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, हे गुरु, मैंने आपके मुख से स्वयंभू मनु के वंश के विषय में भली भांति सुना, किंतु अन्य मनु भी तो हैं, अतएव मैं उनके वंशों के विषय में सुनना चाहता हूं, कृपा करके उनका वर्णन करें। अभी दूसरा श्लोक हम बोलेंगे इकट्ठे। मन्वंतरे हरे जन्म कर्माणि च महीयसा गृणन्ति कवयो ब्रह्मा तानि नो वदिष्णवता। शब्दार्थ, मनवंतरे मनवंतरों के परिवर्तन के समय, मतलब एक मनु से दूसरा मनु बनने का अंतराल। हरे भगवान का जन्म प्राकृत्य कर्माणी तथा कर्म च भी मही यशः अत्यंत यशस्वी का गृणन्ति वर्णन करते हैं कवया विद्वान पुरुष जिन्हें पूर्ण बुद्धि है ब्राह्मण ये विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी तानी उन सबों का उन सबों को नहा हमसे वद कहिए श्नवताम सुनने के इच्छुक। अनुवाद और तात्पर्य शील के द्वारा जाय शील बाज के। अनुवाद, हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो नितांत बुद्धिमान है, विभिन्न मनवंत्रों में भगवान के कार्यकलापों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं, हम इन वर्णनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, कृपया उनका वर्णन करें। तात्पर्य, भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जिनके अंतर्गत गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा युग अवतार आते हैं और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। शास्त्रों के संदर्भ के बिना किसी को भी भगवान का अवतार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख है, गृणन्ति कवय पूर्ण बुद्धिमान एवं बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति विभिन्न अवतारों के विवरणों को स्वीकार कर चुके हैं। इस समय विशेष रूप से भारत में अनेक धूर्त अपने को अवतार बताते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। अतएव अवतार की पहचान की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों तथा उनके विलक्षण कार्यकलापों से की जानी चाहिए। जैसा कि श्लोक के महियस शब्द से लक्षित है, अवतार के कार्यकलाप कोई साधारण जादू या जादूगुरी नहीं होते, अपितु विलक्षण होते हैं। अतः भगवान के किसी भी अवतार की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों द्वारा की जानी चाहिए और उनके कार्यकलाप यथार्थ विलक्षण होने चाहिए। परीक्षित महाराज विभिन्न युगों के मनुओं के विषय में सुनने को उत्सुक थे। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल में हजारों मनु होते हैं। ओम अज्ञानादिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकर्तृभयश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि घोर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मेरे बीच में मेरा ब्रदर भी आया हुआ है अमेरिका से, वेलकम। तो जैसे इस अध्याय का शीर्षक ही है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु, तो मतलब ब्रह्मांड के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका वर्णन हो रहा है यहां पे। तो इसलिए मैं अपने मोबाइल को ना वो कर रहा हूं, साइलेंट में कर रहा हूं। तो यहां पे जो आपको पता ही है सुखदेव गोस्वामी जो हैं और परीक्षित महाराज, उनके बीच में ये संवाद चल रहा है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने जो पहले मनु हैं स्वयंभू मनु, उनके सारे परिवार के बारे में विस्तार से बताया। पहले जो इस 7 स्कंद हैं उसमें उनकी वंशावली का वर्णन है ना। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, याद है ना। 2 पुत्र थे उत्थानपाद और प्रियव्रत, वो पुत्रियां थी। तो उनका सबका वर्णन किया है ना। उत्थानपाद के फिर पुत्र हुए ध्रुव महाराज, है ना। ध्रुव महाराज का वर्णन किया पूरा, उनके आगे सारा उनका वर्णन 7वें स्कंद में, 7वें स्कंद तक आप सुन चुके हो। तो अब जो है जो परीक्षित महाराज हैं वो कह रहे हैं कि मनु तो बहुत होते हैं है? और अभी जो मनु हो चुके हैं उनके बारे में भी बताओ और जो आने वाले हैं सारे मनुओं के बारे में बताओ। तो इस तरह से अब जो है आगे जो है सुखदेव गोस्वामी जो बाकी मनु है, 14 मनु होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और एक मनु की आयु बहुत लंबी होती है, 71 युग के बराबर। 71 युग है ना, तो एक जो है चार युगों का जो साइकिल है वो कितना बड़ा होता है, 71 युग तो कितने बड़े हो गए, तो कितने मनु, मतलब हजारों हजारों मनु आ जाएंगे ब्रह्मा जी के जीवन में, एक दिन में ही 14 मनु आ जाता है, कितने मनु आ जाएंगे। तो यहां पे प्रभुपाद जी जो हमें समझाना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज ये पूछ रहे हैं अवतारों के बारे में, तो कई तरह के अवतार होते हैं है ना, लीला अवतार, युग अवतार, गुण अवतार। प्रभुपाद जी जो पॉइंट बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अवतारों का वर्णन शास्त्रों में है, हम अपने मन से नहीं कह सकते कि ये अवतार है ना। प्रभुपाद जी क्या एक बात बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं जो हमें समझनी चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस समय विशेष रूप से भारत में अनेक धूर्त अपने को अवतार बताते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं जी हम अवतार हैं, हम भगवान हैं, है ना, कितने भगवान हैं, एक भगवान नहीं कितने भगवान हैं। तो वो हमें प्रभुपाद जी आगाह कर रहे हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि उनको हम उनका भांडा फोड़ करें, घबराना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हो, अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, अपने लिए तो वो नरक तैयार कर ही रहे हैं, ये लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, है ना। जैसे भगवान भी जब थे यहां पे तभी भी एक अवतार आ गया था, कहता मैं भगवान हूं, है ना, आपने कृष्णा बुक में पढ़ा ना दशम स्कंद में पौंड्रक, वो कहता मैं भगवान हूं, भगवान को ललकारता था, तुम भगवान तो मैं भगवान हूं, तुम नकली हो, मैं हूं असली। तो भगवान ने उनको कर दिया ना, खत्म कर दिया। तो इसी तरह से इस कलयुग में भी हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को गुमराह होने से बचाएं, क्योंकि ये कलयुग है, हमें समझना चाहिए कि किस युग में रह रहे हैं। जैसे अभी अभी हमें समझे, अगर समझदार है कि सर्दी का मौसम है तो स्वेटर डालेगा ना, वो अगर कई ऐसे पागल है वो नंगे घूम रहे हैं इस समय भी, देखते हो ना दिमाग इनका, लेकिन सबने देखो सर्दी है भी स्वेटर डाल दिया, हमें पता है सर्दी है, अभी जैसी गर्मी आएगी तो स्वेटर स्वूटर क्या सब कुछ पहनेंगे, पतली सा कुर्ता या पतली सी बनियान डाल के घूमेंगे। तो इसी तरह से हमें ये भी भगवान के ये चक्र है, ये कलयुग है, कलयुग भगवान ने बनाया है, कलयुग जो है भगवान ने बनाया है, ऐसा नहीं कि भाई कलयुग आ गया अभी सतयुग आएगा, ये साइकिल है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग सतयुग, चार युगों का साइकिल है वो चलता है। तो कलयुग के हिसाब से हमें देखना चाहिए, ये कलयुग है, सबसे पहले हमें पहचानना चाहिए। कलयुग समझेंगे नहीं जी हमेशा ही ऐसे था जी, क्या कलयुग है जी हमेशा से रहे हैं जी, मतलब विचार ही नहीं करना चाहते, दिमाग को जोर ही नहीं डालना चाहते। अगर हम देखें तो हम अपने जीवन में भी देखेंगे कि कलयुग बड़ा है, नहीं क्योंकि कलयुग दिन बे दिन बढ़ता चला जा रहा है, दिन बे दिन, ऐसा नहीं है कि इसको टाइम लगता है कि आपको साल भर कम से कम देखना पड़ेगा, इतना ही है। तो हर दिन देख सकते हो आप कि जो डिग्रेडेशन है वो होता चला जा रहा है, जो भी अभी भी जिसकी उम्र 40 साल के 50 साल के आसपास है वो अपने जीवन में ही देख सकता है कि हम बच्चे थे जब छोटे थे तो इतना बुरा हाल नहीं था, जो हमने देखा है प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जो है ओपन जीप में, ओपन खुली जीप होती है ना ऊपर से, ओपन जीप में ऐसे हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करता था। अगर आप जानते हैं हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, हमने अपनी आंखों से देखा है ओपन जीप में ऐसे सलाम करते हुए जाते, अभी कोई जा सकता है हमारा कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, पीछे चाहिए कमांडो, आगे कमांडो चाहिए, बुलेट प्रूफ कार चाहिए, है ना। तो कलयुग का जो प्रभाव है, तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये कलयुग है, उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है देख सकते हैं। तो इस कलयुग में जो असली चीजें जो है वो लुप्त होती चली जा रही है, सारी चीजें असली चीजें लुप्त होती चली जा रही है, और नकली चीजों चीजों का बोलबाला है ना। और लोगों को जैसे कहा है भागवतम में पहले ही कह दिया, प्रायण अल्प आयुष कलो अस्मिन युगे जना मंदास मंद मत्यो मंद भाग्य हितुता, तो आप ये लक्षण देख सकते हो ये बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रायण अल्प आयु, लोगों की आयु अल्प होगी। पहले जो है सतयुग में लोगों की आयु आपको लगेगा कि एक कहानी है इमेजिनेशन है, पर ये सच बात है, 1,00,000 वर्ष जिया करते थे सतयुग में, फिर आयु घट गई तो 10,000 साल आई, फिर 1,000 साल, अब इस तरह 100 साल आ गया, वो लोग भी नहीं जी पाते। 100 साल में कितने, 100 साल में कितने लोग नजर आते हैं आपको? बहुत कम। 60 साल में हमने जैसे अपने मेडिकल में भी हमने पढ़ा है, जब हम पढ़ते थे आज से 30 साल पहले, जब हम मेडिकल में पढ़ते थे तो जब आता था पेन इन चेस्ट, भाई किसी को छाती में दर्द हो गया, क्या क्या कारण हो सकते हैं बताओ, पूछते थे चेस्ट पेन क्या क्या कारण होते हैं बताओ, तो हम कारण बताते थे प्रायोरिटी के हिसाब से, सबसे पहला कारण ये, दूसरा कारण ये, तीसरा कारण। एज ऑफ द पेशेंट इज 25 ईयर्स, अब बताओ कारण बताओ। तो जब हम बताते ना कि उसको हार्ट में भी दर्द हो सकता है, हार्ट में, तो लास्ट में बताते थे, क्योंकि यंग, अगर कोई यंग पेशेंट आ गया 25 साल का और उसको अगर चेस्ट पेन है तो बहुत कम चांसेस है कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम होगी, लास्ट में बता दीजिए, हो सकता है लास्ट में, अभी सबसे पहले होता है चेस्ट पेन। कोई भी आ गया 25 साल का, 20 साल, सबसे पहले देखो वो करो ईसीजी, करो ईसीजी, करो, बुढ़ापा आ गया कि नहीं आ गया, सोचो कुछ आपके सामने है, हमने अपने जीवन में देख लिया। तो आयु कम होती चली जा रही है, ये तो स्टैटिस्टिक्स से बताते हैं कि आयु बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, ये स्टैटिस्टिक्स के जो है ना वो है जगलरी है, जैसे यहां बता रहे ना जादूगरी है, ये भी अवतार के कार्यकलाप को साधारण जादू या जादूगरी नहीं होते, ये स्टैटिस्टिक्स भी जादूगरी है, पता है आपको, उल्टा पुल्टा करके बता देंगे, फैक्ट कुछ होगा स्टैटिस्टिक्स कुछ बता देंगे, मूर्ख बना देंगे आपको स्टैटिस्टिक्स से, सच। तो यही वो बता रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, अभी तो बच्चे मर जाते हैं गर्भ में, उसका आंकड़ा करते हो आप, जब स्टैटिस्टिक्स में इसका आंकड़ा नहीं करते, गर्भ में कितने मार दिए, कितने गर्भ में मार दिए आपने बच्चे, उसका आंकड़ा लगाते हो, तब पड़ा रहेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उसको तो वो कहते नहीं है मर्डर, वो कहते हैं अबॉर्शन है, ये मर्डर थोड़ा है, अबॉर्शन है इसका तो वर्ड, अबॉर्शन का मतलब मर्डर होता है, आपको इंग्लिश नहीं आती, ये सच बात है, इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, भगवान की नजरों में मर्डर है ये। अगर आप पेट में बच्चे को मार देते हो, चाहे वो 2 महीने का है चाहे 1 महीने का है, ये मर्डर ही है, आपके कहने से नहीं, आप अपना कानून बना लोगे तो काम चलेगा नहीं, आपने अपने घर में बैठ के सारी आपकी ज्वाइंट फैमिली है, सारे भाई भाई बैठ गए, बहने बैठ गई, सब बच्चे बैठ गए और एक कानून बना दिया, ऐसा है जी इस रोड पे हम बाई तरफ चलेंगे जी, उल्टा चलेंगे, जैसे ट्रैफिक चल रहा है उल्टा चलेंगे, तो मरोगे, थोड़ा तुम्हारा कानून चलने वाला भैया, मरोगे, ये हाल हो रहा है समाज में, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया जी लीगल है जी, अबॉर्शन लीगल है जी, मरोगे, भुगतो पाप। तो ये है ब्रह्मांड के प्रशासक, ये है इनका कानून चलता है, हमेशा हमेशा चलता है इनका कानून, और कोई भी इनके कानून से बच नहीं सकता। तो इसीलिए जो व्यक्ति भागवतम पढ़ता है, जो व्यक्ति भगवद्गीता पढ़ता है, वो बड़ा चतुर है, बहुत चतुर है, इसीलिए कहा जय जन कृष्ण भजे सही, बड़ा चतुर है, बड़ा क्लेवर है वो, क्योंकि सबसे सुप्रीम जो कंट्रोलर है उसके उसको कानून पता है, वो जो टाइम प्लेस सरकमस्टेंस से परे है, हर जगह जो काम आएंगे जो एब्सोल्यूट, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को ये सावधान रहना चाहिए, प्रभुपाद जी से समझा रहे हैं कि अवतार जो है उनका वर्णन है शास्त्रों में, अवतार कोई अपने आप नहीं बन जाते, और वो विलक्षण कार्य करते हैं, जादूगिरी नहीं करते, जादूगिरी में और विलक्षण कार्यों में हमें भेद पता होना चाहिए, है ना। जैसे भगवान ने जब इस उंगली पे गोवर्धन को धारण कर लिया, ये जादूगर नहीं है, ये जादूगरी नहीं है, ये विलक्षण कार्य है, छोटा सा बच्चा जो है इस उंगली पे इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को धारण कर ले, या जैसे आपके नरसिंह का भगवान आए और आधा शरीर उनका शेर का था और आधा शरीर मनुष्य का था, और हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु जिसने त्राही त्राही मचाई हुई थी, सारे त्रिलोक में इंद्र सारे जो है वो घबरा रहे थे, उसको यहां पे रखा, अपने नाखूनों से मार दिया था, सारी उसकी शर्तें पूरी करते हुए, है ना। उसने बोड़ी उसने कहा जी मैं तो अमर हो गया, मैं तो अमर हो गया, ना तो घर के अंदर मरूंगा, ना घर के बाहर, ना ऊपर ना नीचे, सारी शर्तें पूरी कर दी, और भगवान ने सारी शर्तें पूरी करते हुए मार दिया उसको। ये है विलक्षण कार्य, ये विलक्षण कार्य। इसी तरह से हमें समझना चाहिए, जो आजकल के साइंटिस्ट है ये भी सोचते हैं कि हमने ये भाई बीमारी को भी जीत लिया, उस बीमारी को भी जीत लिया, ये भी जीत लिया, वो भी जीत लिया, देखो जी हम तो अमर हो जाएंगे। और देखो अगर आप चाहते हो अमर होना तो ऐसा करो, अभी तो हमें पता नहीं है इस डिजीज का, लेकिन फ्यूचर में हमें पता लग जाएगा। ऐसा करते हैं, आपके शरीर को डीप फ्रीजर में डाल देते हैं, जब बीमारी का पता लगेगा आपको निकालेंगे, ठीक कर देंगे आपको, अमर हो गया। नहीं समझ में बात, सच्ची बात बता रहा हूं, आगे करो काम सुना रहा हूं, सच्ची बात है। अरबों रुपया एक व्यक्ति ने दिया, बड़ा अमीर आज अमेरिका का, उसका शरीर शायद अभी तक रखा हुआ है डीप फ्रीजर में। वो मर गया, उसका शरीर रखा हुआ है डीप फ्रीजर में, कि एक दिन इस बीमारी का पता लग जाएगा तो इसके शरीर को निकालेंगे और ये जिंदा हो जाएगा। हो सकता है ऐसे, ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं। हिरण्यकशिपु की तरह उनके वंशज, हिरण्यकशिपु ने कहा कि जो लोग गंदे कार्य करते हैं उनको मैं स्वर्ग भेजूंगा, मैं हूं राजा, मैं स्वर्ग भेजूंगा, सारे जो नियम है प्रकृति के बदल दूंगा उसको। नियम बदलने से पहले कोई भगवान आए खात्मा कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये बात को हमें समझना है कि भगवान के कार्य विलक्षण होते हैं, कोई जादूगरी नहीं होते। ऐसे किया सोना बन गया जी, राख आ गई जी, ये तो जादूगरी है, कोई भी कर लेता है। हम बचपन से देखते हैं जादूगरी, ऐसे करते हैं कबूतर आ जाता है, कबूतर आ गया। ऐसे थोड़ा भगवान के, तो भगवान थोड़ा कार्य, भगवान के कार्य, भगवान के कार्य कर, भगवान के कार्य विलक्षण होते हैं। विलक्षण का मतलब जैसे संदीपनी मुनि गुरु है भगवान के, और भगवान लोग जानते हैं कि भगवान है। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो भगवान ने कहा गुरु महाराज दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, कहते हाँ गुरु दक्षिणा चाहिए, मेरा बेटा बहुत साल पहले यमलोक को पधार चुका है, उसको वापस ले गया। भगवान ले आए, वो जादूगर कर सकता है, कोई भी सो गार्ड जो गॉड है कर सकता है, जी हमारे बेटा मर गया है कर सकता है, भगवान कर सकते हैं, कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ये नहीं कि संदीपनी मुनि के लिए किया था जी, अब तो कलयुग है, और कलयुग में भगवान थोड़ा कलयुगी हो गए, भगवान तो वैसे के वैसे, हम कलयुगी हो गए हैं। तो अगर हम, और आज भी देखो चमत्कार हुए, प्रभुपाद जी के जीवन में देखो कितने चमत्कार हुए। देखो प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में कोई बाहर नहीं निकलता, 70 साल की उम्र में बाहर निकलना बंद कर देते हैं लोग ज्यादातर लोग। और उनको कहो जी ऐसा करो जी, आप समुद्री जहाज में अमेरिका भेजते हैं आपको, हम टिकट देते हैं, यही ठीक मुझे, ऐसे ठीक मुझे, अब नहीं जाने का मन करता। प्रभुपाद जी ने खुद टिकट ली 70 साल की उम्र में, जाकर रिक्वेस्ट की कृपया एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दे दो, चाहे आप मालवाहक जहाज पे ही दे दो, मालवाहक जहाज में माल जाता है, मालवाहक जहाज में कोई वो नहीं होते, शॉर्टकट नहीं होते वहां पे, उसमें कोई कंफर्ट नहीं होते, मालवाहक जहाज में माल जाना है, माल को फेंकती है जैसा भी हो, क्या करना पड़ता है। उस जहाज पे गाड़ी दे दो टिकट, उस टिकट पे बैठ के 70 साल की उम्र में अमरीका अकेले पहुंच गए, जेब में एक पैसा नहीं, बूढ़ी शरीर और इंग्लिश भाषा आती नहीं ज्यादा, बंगाली है वो, आती है मतलब टूटी फूटी आती है, पैसा है नहीं ज्यादा, कोई खूबसूरत भी नहीं है जैसे कोई हीरो है कोई बंगाली 5 फुट के, ये लेके पहुंच गए अमेरिका। क्या था उनके पास, क्या था, भगवान के नाम के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, पूर्ण निष्ठा। और देखो एक चमत्कार किया हुआ नहीं, कलयुग में तो हुआ, थोड़ा ही सत्यों की बात है कि प्रभुपाद जी आए थे, एक समय की बात है, वो अभी की बात है भैया, तो 100 साल मुश्किल से हुए हैं, और इसी सेंचुरी में 1977 में उन्होंने शरीर देखा, कितने लोग अभी यहां पे हैं जिन्होंने उनको आज साक्षात देखा, हमने नहीं देखा लेकिन कितने लोगों ने देखा है, आपके मंदिर में हमारे महाराज जो है शिष्य देखा है, बातें की है, कोई कहानी थोड़ा है, चमत्कार नहीं हुए। तो भगवान जो है और उनके जो भक्त हैं वो जो है विलक्षण कार्य करते हैं, विलक्षण, तो जादूगरी नहीं करते, लोगों को बहकाते नहीं है ना, और भगवान को आगे रखते हैं हम, अपने आप को आगे नहीं रखते, ये नहीं कहते मैं भगवान हूं। श्रील प्रभुपाद जी को जानते भी नहीं थे, जब प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया इस्कॉन, सारी दुनिया जानती थी हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, सब जानते थे, प्रभुपाद जी को जानते भी थे। अभी पहले आपको याद है एक प्रोग्राम आता था कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन चलाता था ना, बहुत साल पहले, दस साल हो गए थे। उस समय किसी से पूछा, 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन आ गया, 1 करोड़ उसका आ गया 1 करोड़ रुपया। वो क्वेश्चन था कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कौन है, हार गया बेचारा। अगर उसने ज्वाइन किया था इस्कॉन को करोड़ में मिलता था, इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया पता नहीं प्रभुपाद जी एसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद लिखा हुआ था एक चॉइस ही पकड़ ही नहीं पाया, हरे कृष्ण हरे राम सब पता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने आगे रखा नहीं अपने आप को कभी भी, प्रभुपाद जी बैक में रहे। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे मेरा नाम हो, प्रभुपाद जी चाहते थे कृष्ण का नाम हो, भागवतम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, भगवत, ये है भक्त, ये है भक्त, इसको पहचानना चाहिए हमें। लेकिन आजकल क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, कलयुग की बुद्धि है सुमंद मंद, मतलब मंदा बुद्धिमंद आलसी, तो वो लोग बहुत 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 भाग्यशाली हैं जो इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं उनके संपर्क में आते हैं, और हमें भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यही एक आशा की किरण है। आज समाज में एक आशा की किरण वही है इस्कॉन की फिलॉसफी, और उसको जो ग्रहण करता है, क्योंकि इस्कॉन का मतलब ये नहीं है कि हम कंठी धारण कर लिया, हमने तिलक इस तरह का लगाया इस्कॉन का तिलक, कई लोग कहते प्रभु जी आपने तो इस्कॉन का तिलक नहीं लगाया हुआ, ये तो राधा कुंड का तिलक लगाया हुआ आपने, मतलब इस्कॉन का तिलक अलग होता है ऐसा, इससे आप इस्कॉन के नहीं बनते। इस्कॉन के तब बनते हैं हम जब प्रभुपाद जी की जो फिलॉसफी है, प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं उसमें हम अपना जीवन चलाते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हम। प्रभुपाद जी ने अट्रैक्ट किया, प्रभुपाद जी बहुत अट्रैक्टिव थे, इतनी बूढ़ी आयु के होते हुए, इतने शॉर्ट स्टेचर होते हुए, बंगाली होते हुए भी बहुत अट्रैक्टिव थे, लोगों को लगता था कि उनके आ रहा है कोई, पता नहीं ऐसे लगता था कौन आ रहे हैं, ऐसे छोटे से चलते थे, आप देखो उनकी वीडियो ऐसे छोटे से चल रहे हैं डंडी लेके, बड़े बड़े उनके साथ चल रहे हैं, ब्रह्मानंद इधर चल रहे हैं, गर्ग मुनि ऐसे चल रहे हैं, उनके बॉडी बिल्डर्स वो छोटे से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे वो कहते चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो अट्रैक्टिव थे, अट्रैक्शन आती है आत्मा से, शरीर से अट्रैक्शन नहीं आती, शरीर तो सड़ता है सड़ेगा धीरे धीरे सड़ेगा, तो ऐसी है जैसे कोई भी फल रख दो आप, यहां पे आपने सेब रख दिया, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लाल है, बहुत बढ़िया जी कश्मीर का सेब, तो थोड़े दिन में देखो ऐसी बदबू मार रहा होता है, तो कूड़े में फेंको अगर रखा रहे, ऐसी शरीर है हमारा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, 25-26 साल 27 साल का, धीरे धीरे 50 साल का होगा, 60-70-80 सड़ेगा फिर, तभी तो लोग बूढ़े लोगों के पास बैठना नहीं चाहते ना लोग। लेकिन अगर आपने इसी दौरान 25-26 साल, जैसे आप बहुत भाग्यशाली हो, आप ब्रह्मचारी लोग बहुत भाग्यशाली हो आप, क्योंकि आप वो कल्टिवेट कर रहे हो जो परमानेंट है, शरीर में तो जाना सबका जाएगा शरीर, और उसमें अगर आपने साइंस ग्रेटिफिकेशन कर लिया तो भी दुखी हो गया, साइंस ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ जाएगी, इंद्रिय तृप्ति की आदत पड़ जाएगी, और इंद्रिया साथ छोड़ देंगे, फिर खटिया जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए मुसीबतें करोगे, ये खाओगे वो खाओगे, क्या व्याग्रा खाओगे, व्याग्रा क्यों होते हैं मैंने सुना नहीं, व्याग्रा होते हैं वैराग्य क्या होता है वो खाओगे, वैराग्य आना चाहिए, व्याग्रा नहीं आना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए 60 साल, ये गोली खाओगे, प्लास्टिक सर्जरी कराओगे, ये करोगे, अच्छे अच्छे कपड़े डालोगे, बाल काले कर लोगे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति अभी छोड़ोगा, छोड़ो कैसे, क्योंकि आत्मा का किया ही नहीं, आत्मा का कल्टीवेशन किया नहीं। आप सब लोग जब लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हो, हम बता नहीं सकते कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि जब आप पहुंचोगे इस स्टेज पे आपको पता ही लगेगा थोड़ा पा गए, पता भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आप तो अलग ही आनंद ले रहे हो, शरीर से तो आनंद नहीं ले रहे, शरीर से आनंद लेने की आपकी आदत ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को बताना है लोगों को प्रभुपाद जी, इसीलिए देखो प्रभुपाद जी ने बाकी ज्यादा चीजों की चर्चा नहीं की, प्रभुपाद जी ने इसी के ऊपर बोला है कि हमें शास्त्रों के आधार पर अवतारों को जानना है, और कलयुग में धूर्त लोग हैं जो अपने आप को अवतार बता रहे हैं, उनका हमें भांडाफोड़ करना है, हमें घबराना नहीं, तो बोलना है प्रभुपाद जी को, लेक्चर सुनो प्रभुपाद जी कैसे कहते हैं, कहते हैं अगर वो अपने आप को भगवान कहता है ही इज नॉट जीओडी गॉड, ही इज जीओडी डॉग। रूपा जी के लेक्चर में ऐसे बोलते हैं, रूपा जी साहब बोलते हैं डॉग है वो, गॉड बोला डॉग है वो जो अपने आप को भगवान कहता है। इसलिए रूपा जी कहते हैं कि इस्कॉन में हमें सब पता है, भगवान का नाम भी पता है, भगवान का एड्रेस भी पता है कहां रहते हैं, भगवान की सारी फैमिली भी पता है हमें, उनकी पत्नी कौन है, उनके बच्चे कौन है, उनकी प्रेयसी कौन है, सब नॉलेज है हमारे पास, डिटेल नॉलेज है। ऐसे भी भगवान है अल्लाह अकबर। तो यही नॉलेज जो हमें फैलानी है। और ये जो महीना है ये बहुत ही सुंदर महीना है, इस महीने में तो आपके पास मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, किताबें किताबें हैं आपके पास, कितनी भी किताबें मांगो कमी नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना कि पहले तो जैसे प्रभुपाद जी के टाइम पे देखो, प्रभुपाद जी ने जब डिस्ट्रीब्यूशन करना था तो पहले क्या करते थे, लिखते थे उसको, लिखते थे, फिर वो किसी के पास जाते थे भिक्षा के लिए, भिक्षा हम दे ही क्या है, पेपर चाहिए जी, भागवतम भगवत गीता छपवानी है, कृपा करके पेपर दे दो, आपके पास तो पैसा दिया हुआ है भगवान ने, इंडस्ट्री लिस्ट हुआ, वो पैसा देते थे, पेपर खरीदते थे प्रभुपाद जी खुद अकेले बुढ़ापे में, फिर जाते थे वहां पे प्रिंटर के पास छपवाते थे, छुपाते थे, और उनके पास पैसा नहीं था इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट भी लेते थे, पैसा बचाना है, ब्रेकफास्ट लिया तो कोई बात नहीं, लंच करूंगा सीधा, टाइम भी जाया है बचेगा, पैसे भी बचेंगे, चलो जी प्रिंटर के पास गए, फिर प्रूफ रीडिंग करते थे, प्रूफ रीडिंग करने के बाद फिर उसको लेके आते थे और बांटते थे, खुद जाते थे बांटते, पूरी दिल्ली शहर में। प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि एक ही सिटी है सारी दुनिया में जिसमें प्रभुपाद जी ने खुद अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो है दिल्ली, और कहीं नहीं किया, अमेरिका में नहीं किया प्रभुपाद जी ने, उनके शिष्यों ने किया, प्रभुपाद जी ने यहां अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो अभी हमें तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ी हुई हैं आपके पास ना दो आपको, और ऐसा भी नहीं है कि पहले पैसे दो जी फिर किताब मिलेगी, नहीं, आप ऐसा करो किताबें ले जाओ, कितनी किताबें चाहिए ले जाओ, जब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे फिर आपकी डोनेशन दे देना, अच्छा है कि नहीं है। तो प्लीज ये अगर हम किताबें बांटेंगे लोगों को, अगर ज्ञान होगा तो ही जो है, रोबा जी कहते हैं कि किताबें ट्रांसेंडेंटल हैं, है ना, जैसे अभी ये भगवान है सामने राधा राधिका रमन है ना कृष्ण बलराम, तो ये चाहे कोई उसको पत्थर भी समझे, वो नास्तिक आए कि क्या ये लोग पत्थर की पूजा करते हैं, है ना, जैसे एक व्यक्ति था जिसको रेवलेशन हो गया, शिवरात्रि थी उसको रेवलेशन हो गया, शिवरात्रि वाले दिन वो गया, देखा उसने जाके शिवलिंग पे एक चूहा जो है ना घूम रहा है, मगर देख भगवान मानते हैं क्या बेवकूफ लोग हैं, और चूहे से तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, ये कहां का भगवान है, रेवलेशन हो गया उसको, उसने एक समाज बना दिया बहुत बड़ा समाज, आज लोग उसको उसके समाज में जाते हैं, किताबें लिख दी अलग से किताबें लिख दी, लेकिन कारण क्या है, तो उसने कोई भी वैष्णव गुरु धारण नहीं किया, समझ नहीं पाया। आपको क्या जवाब है इसका, आपसे कोई पूछे कि आपके भगवान जो हैं वो अपनी रक्षा तो कर नहीं सकते, आपकी रक्षा क्या करेंगे, मान लो मक्खी बैठी हुई है राधिका राधा राधा रमन में मक्खी बैठी हुई, वो मक्खी तो उड़ा नहीं सकते, आपकी क्या करेंगे रक्षा, क्या जवाब है, क्या जवाब दोगे बोलो, प्रचारक हो सब आप, बोलो शाबाश। अच्छा वेरी गुड, और बताओ, अच्छी और बताओ, अच्छा है, अच्छा है, हाँ बोलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, और बताओ, बहुत अच्छा, हाँ बस और बताओ, ठीक ठीक उत्तर है, हाँ हाँ। तो ये बात है, इसको हमें इस तरह से उनको बताना है, ये सारे प्रश्न के उत्तर ठीक हैं, और ये हमें उनको समझाना है कि हमें पता लगना चाहिए कि भगवान यहां पे आए कि उनको पता ही नहीं कि भगवान क्यों यहां पे खड़े हैं, भगवान इसलिए नहीं खड़े कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे मैं सारे मेटीरियल नियम जो है भौतिक नियम जो है कैसे तोड़ सकता हूं मैं, इसलिए नहीं आए यहां पे, क्योंकि वो तो चाहते ही है कि आप लोगों को पता लगे कि भगवान है। भगवान ने भौतिक दुनिया इस तरह से बनाई है कि लोग ये समझे कि इसको कोई चलाने वाला है नहीं, बाय चांस ये तो भगवान चाहते हैं ये, आपको पता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं चाहो तो आप भगवान कैसे बनोगे? अगर आपको पता लग गया कि कोई है कंट्रोलर तो आप भगवान कैसे बनोगे? हमारा तो जन्म इसलिए हुआ है ना इस भौतिक संसार में कि हम भगवान बने, नहीं? कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थे माया झापटिया धरे। इसीलिए तो भगवान ने हमें भेजा, क्योंकि हम भी भगवान बनना चाहते थे, भगवान के साथ ही तो थे। नहीं प्रभु जी, अगर गलत है तो बताओ ना, गलत बोलो। सच बात है ना, हम इसी संसार में इसीलिए आए ना, क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं। तो अगर भगवान भी अपना यहां पर सत्ता दिखाएंगे तो हम कैसे बनेंगे भगवान? तो इसलिए भगवान ही सत्ता दिखाते हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कितने इंस्टांसेस हैं कि वो मूर्ति थी, मूर्ति फट गई, जब जड़ भरत के, हम इतिहास सुनते नहीं, जड़ भरत थे, जड़ भरत को लेके आए, और जड़ भरत को जब लेके आए तो उनको जब बलि देने लगे उनका, तो जो काली मां की वो थी मूर्ति थी, फट गई और काली मां प्रकट हो गई। ये कहानी थोड़ा सच्ची बात है ना। राधिका जो है, राधा रमन जो है वृंदावन में, वो शिला के रूप में थे, शिला फट गई और वो प्रकट हो गए। कितनी कथाएं। लेकिन भगवान ये हमेशा प्रकट नहीं करते ताकि हम ये समझे रहे कि कोई भगवान नहीं है। अब वो मुगल राजा था औरंगजेब, उसने कहा कि आप पत्थर मूर्ति कर, मूर्ति पूजा करते हो, कोई मूर्ति पूजा नहीं चलेगी इस्लाम धर्म में, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, चलो तोड़ो, जाओ राधा गोविंद का मंदिर तोड़ो, उसका मंदिर तोड़ो, जाओ जाओ तोड़ो तोड़ो तोड़ो। और तोड़ते तोड़ते उसका वंश कहां गया? कोई मुगल नजर आता है आपको? रिएक्शन तो मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसे गलत कार्य करोगे तो रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान उस तरह से उसको अतिक्रमण नहीं करते मेटीरियल, जैसे आपने बताया, क्योंकि भगवान आए हैं हमारी सेवा लेने के लिए। भगवान ये दिखाने के लिए नहीं यहां प्रकट हुए कि मैं भगवान हूं। तो जिस तरह से हम ये मूर्तियां जो है, हम इनके साथ किसी तरह से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन ये दिव्य है। इस तरह से किताबें भी दिव्य हैं, दिव्य हैं ये किताबें, है ना। आप दिखता तो ये है कि जैसे दूसरी किताब है, टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे मैगजीन्स हैं, जैसे ये भी किताब है, किताब जो है क्या है इसमें, लेकिन ये दिव्य है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कोई इनको छुएगा भी ना वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कहा ना प्रभुपाद जी ने, या नहीं कहा? मैं मन से कह रहा हूं अपने, क्योंकि इनको को ये दिव्य है, इनको कोई छू लेगा ना वो उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, छूने से सिर्फ। इसलिए हमें देनी है ये, दीज आर जस्ट लाइक डेटीज, कि देवी के जो दर्शन करता है, जिसके आगे दर्शन ही करता है वो पवित्र होता है। कुछ नहीं किया होता, सेवा नहीं की अभी, सिर्फ दर्शन किया है। इस तरह से जो इन किताबों को छूता है ना उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, और फिर जब इसने पढ़ लिया प्रभुपाद जी कहते हैं एक वर्ड भी पढ़ लिया वो भी उसको इफेक्ट कर देगा। तो इसलिए इन बुक्स को हमें बांटना है, और ये बहुत अच्छा मौका है। हमें वैसे तो 365 दिन बुक्स का मैराथन करना चाहिए, लेकिन कम से कम ये महीने तो करना चाहिए। इस महीने को जो गवाता है वो बहुत अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हार्मफुल है, उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए ये हार्मफुल है अगर ये मौका गवाता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि प्रभुपाद जी को बहुत ये प्लीज करती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी समय है थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कुछ, आपका भी इनपुट होना चाहिए। सब यहां पे बड़े सारे बड़े बड़े भक्त हैं, सारे एडवांस डिवोटीज बैठे हैं। तो नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, कई लोग नहीं हो गए, मैं सच कह रहा हूं प्लीज। सारे यहां पे अच्छे भक्त हैं, बजाई भक्त। तो कोई आपका प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट है? इतनी किसी जो बोलो ना सर, और हाँ बोलो रोज, आपका प्रश्न है कोई?
प्रभुपाद जी की ड्यूटी थी, जैसे आपने कहा एक फल है उसमें पाकर खराब हो जाएगा, फ्रिज में कोई भी फल रखो विक्षिपन के बाद खराब हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं इसको मेरा ऐसा फ्रिज है गद्दी से गद्दी चीज इनको और हीरे बन के निकल जाएगी।
क्योंकि इस्कॉन में, इस्कॉन प्रभुपाद जी ने कहा कि इन द वूम्ब ऑफ इस्कॉन कृष्ण हैज बोर्न। तो कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है ना, कृष्ण का शरीर दिव्य है, जैसे सूर्य है ना, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अंधकार। जैसे सूर्य है गंदी से गंदी चीज को भी साफ कर देता है, पवित्र कर देता है, ऐसे ही क्योंकि इस्कॉन में कृष्ण है, कृष्ण तो कृष्ण के साथ जो भी आ गया वो पवित्र हो गया। ये तो समझ ना, ये तो समझ है, ये लोगों को समझ नहीं आता। वो कहते क्या अरेगिना अरेगिना करते रहते, क्या अरेगिना अरेगिना करते रहते, चाइल्ड हिप्नोटिज्म है, चाइल्ड हिप्नोसिस है, कोका कोला बोलो, एक ही बात है, करके देख लो, कोका कोला बोल के देख लो, सिर दर्द ना हो गया तो बोलना किस चीज ऐसे बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ऐसे बोलते हैं, अपने थ्योरेट लगाते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ करुणा चंद्र प्रभु जी, हाँ छोटा सा लिखो, वेरी गुड, थैंक यू, याद दिलाया, कहा किताब छोटा सा तो थी ना समाधि है? नहीं नहीं बैग थोड़ा डाल दूंगा, कृष्णदास के स्मरण मात्र से व्यक्ति को निश्चित ही चैतन्य एवं श्री नित्यानंद की प्राप्ति होगी। चैतन्य भागवत का सिर्फ स्मरण मात्र, नित्यानंद प्रभु के प्रति सर्वथा समर्पित काली कृष्णदास निताई के चरण कमलों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने वृंदावन में भजन करते हुए अपनी देह त्यागी। ब्रजलीला में वे कृष्ण बलराम के एक गोप सखा लवंग है, उनका नाम कृष्ण लीला में लवंग है, लवंग जय श्री काले कृष्णदास तिरुभाव दिवस की। और किसी का थोड़े से दो तीन मिनट है, किसी का कोई प्रश्न समीक्षा? कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न तो होना चाहिए।
धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभुपाद जी का गुणगान किया। और मैं सोच रहा था कि जैसे आपने बोला कि एकमात्र जो उम्मीद की किरण है वो प्रभुपाद का दिव्य संदेश ही है, और ऐसा भी देखा गया है कि बाहर के लोग छोड़ो, जो इस कॉल में भी है काफी सालों से लोग, हमें भी इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं है कि हमारी संस्था एकदम यूनिक है। तो ये कैसे हम अपने जो स्कॉन में काफी समय से लोग आ रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस कैसे लाएंगे? हमें वास्तव में बहुत ही एक रेयर गिफ्ट मिला हुआ है, और हमेशा इस बात को याद रखें। और तभी क्योंकि जब तक हमें नहीं मालूम चलेगा कि हमारे पास इतना महत्वपूर्ण गिफ्ट है और इसका कितना लाभ हो सकता है दूसरों को, तभी हमारे को अंदर प्रचार की जो है उत्साह बढ़ेगा।
इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर चलें, तब हमें पता लगेगा कैसे यूनिक है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसी चीज उसको माने, है ना। और अभी प्रचार को फैलाने के लिए कई बार हम जो है ना कुछ सब कुछ करते हैं, ये प्रचार के लिए है, प्रीचिंग के लिए है, प्रीचिंग को फैलाने के लिए है, उसमें कई बार डाइल्यूशन हो जाता है। जब डाइल्यूशन हो जाता है तो फिर दवाई काम कैसे करेगी, प्रभुपाद जी को एज इट इज हमें फॉलो करना है, जैसे प्रभुपाद जी बोल्डली प्रचार कर रहे हैं हम भी बोल्डली प्रचार करें। हम बोल्डली कैसे प्रचार करते हैं, एज इट इज प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद जी को सुने कैसे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी हमें भी तो ऐसे ही कहते हैं ना प्रचार करने के, प्रभुपाद जी ये तो नहीं कहते कि नहीं नहीं मैं तो शेर हूं तुम बिल्ली की तरह प्रचार करो, तुम नहीं शेर बन सकते, और शेर का बच्चा तो शेर ही होगा। अगर हम प्रभुपाद जी के वंशज हैं, प्रभुपाद जी के हम परंपरा में आ रहे हैं, तो हम भी तो उनकी तरह प्रचार करें क्यों नहीं करें बताओ। प्रभुपाद जी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आप इस तरह से मत बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं। हमें कई बार ये कहा जाता है कि प्रभुपाद जी बोल सकते हैं आप नहीं बोल सकते ऐसे, ठीक बात है। कई जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कई चीजें ऐसे हैं जो क्योंकि उनकी एज थी उनका वो था वो अलग बात है, लेकिन प्रचार तो आप बोल्डली करें, हम अपने आप को रोके क्यों प्रचार करने के लिए, कई बार हम रोकते हैं ना। तो एज इट इज जब हम फॉलो करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि प्रभुपाद जी की जो जो ये इंस्टीट्यूशन है ये यूनिक है और यही एक आशा की किरण है। प्रभुपाद जी ने इसको अपने प्रीवियस आचार्यों के आधार पर इसको कोई उनमें मतलब कुछ भी अल्टीरियर मोटिव नहीं है, कुछ नहीं है, शुद्धता है, प्योरिटी है, प्योर जैसे 26 कैरेट होता है, कौन सा 26 कैरेट सोना होता है 24 कैरेट, मतलब ये 26 कैरेट है ऐसा समझ लो। प्रभुपाद जी की जो संस्था है 24 कैरेट से भी ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल है ना, सत्वगुण से भी ऊपर है। तो ये हमें पता लगेगा जब हम इसको फॉलो करेंगे तो हमें पता लगेगा कैसे यूनिक है। डाइल्यूशन नहीं करना हमें, डाइल्यूशन हम कई बार उसमें प्रचार के लिए हम डाइल्यूशन करते हैं, होता नहीं कहीं जैसे घर में मान लो मेहमान ज्यादा आ गए तो अब घर में दूध सिर्फ 2 कप है या 4 कप है, और थोड़ा सा पानी मिला दो कोई बात नहीं सबको मिल तो जाएगा, थोड़ा सा पानी मिला दो, ऐसा मत करो 4 कप मिला दो, बोलो जी या तो थोड़ा थोड़ा दे दो जी ऐसे ही है जी, अब इतना ही आएगा क्या करें, थोड़ा दूध है अपना स्टेटस बनाने के लिए नहीं, एक एक गिलास बनाना है पानी मिला के पिलाना है। ये मेरे विचार है, बाकी तो बोलो जी आप क्या, आप तो मेरे से आगे हो, आप प्रश्न पूछ ले आगे, ठीक है समय हो रहा है ना, और किसी का प्रश्न है क्या? हाँ पूछो। आप संस्कृत के स्कॉलर हो, कोई बात हुई नहीं, या तो आप बोलोगे मैंने एमए किया हुआ संस्कृत में या पीएचडी की हुई है तब तो हम आपकी बात सुने। अभी कोई ऐसे कोर्ट में आके कहे जी देखो जी जज साहब ये कानून ये जो आपने फैसला किया है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जज पूछेगा ना भैया तुम वकील हो क्या हो, तो फिर हम कैसे आपकी बात सुन रहे हैं भैया, आपका मन कुछ भी कह रहे हो आपकी बात होती है, कोई संस्कृत का बंदा है तो बोले कोई तो फिर आप बाद में पूछ सकते हो ना, क्लास का बात है, क्लास में हम कह रहे हैं आप कमेंट करो, हमने सोचा आप पीआईजी और संस्कृत के तो आप कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। लेकिन प्रभुपाद जी ये तो भागवतम है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, भागवतम में कोई नहीं लिखने वालों में कोई गलती नहीं है, भागवतम में गलती नहीं लिखनी चाहिए। ये तो हमारा क्या है, कहते हैं इफ यू डोंट वॉन्ट टू फॉलो द अथॉरिटी फाइंड फॉल्ट विद हिम, बहुत अच्छा। और क्यों फॉलो करूं भैया, इसको फॉलो करूं मैं, मंगलाचरण कभी आता नहीं है इसको मैं फॉलो करूं, कुछ भी ढूंढ लो, पतला था तो है इतना पतला था है इसको क्यों फॉलो करूं मैं, और कुछ भी ढूंढ लो फॉल्ट है, फॉल्ट ढूंढने में क्या है, कुछ जाता है क्या, मैं नहीं फॉलो करूंगा पतले से, कुछ खाता पीता कुछ है नहीं, मुझे भी नहीं खाने देगा मैं नहीं फॉलो करूंगा। तो इसलिए इसको इसमें फॉल्ट नहीं ढूंढने हमें, जो भी है आप पॉइंट को मेरे पॉइंट को पकड़ो, आपने जो भी कहा आपका मैंने पॉइंट पकड़ा, मेरे पॉइंट को भी पकड़ो प्लीज, आपने ये नहीं कहा लेकिन मेरे दिमाग में बात आपको आ रही है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि हमें फॉल्ट नहीं ढूंढने, पुराने जमाने में फॉल्ट नहीं ढूंढे जाते थे। भगवान राम का चरित्र देखो, लक्ष्मण कहने लग गया पिता ने कैसे कर दिया, एक औरत के उसमें आके ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कैसे हैं ये, पत्नी के गुलाम, जोरू का गुलाम, कैसे ये? और राम क्या कह रहे हैं उनको? राम डांट रहे हैं उसको, तुम पागल हो, पिता में ऐसे थोड़ा तुम अनुचित और उचित ये उनमें नहीं लगता, उचित क्या है अनुचित क्या है। और क्योंकि ये तो है कल, ये कलयुग है, अथॉरिटी को छोड़ दो, अथॉरिटी नो अथॉरिटी, ये तो कलयुग है। और कलयुग क्या है? ब्राह्मण अथॉरिटी नहीं है, क्षत्रिय अथॉरिटी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है, ये तो उसी पर है। तो ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान तो अथॉरिटी किसी को मानोगे तभी तो ज्ञान आएगा। ज्ञान के तीन लेवल होते हैं, ज्ञान आप तीन तरह से ले सकते हो। एक होता है मोटा मोटा, वैसे तो जीव गोस्वामी छह सात तरह तरीके बता रहे हैं, लेकिन तीन मोटा मोटा तरीका क्या बता रहे हैं। एक तो होता है जिसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष प्रमाण, आपको नजर आ रहा है, आपकी इंद्रियां उसको फील कर रही हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये भी अधूरा है, आप पूर्ण ज्ञान नहीं ले सकते इससे, क्योंकि आपकी इंद्रियां अधूरी है। आपको जो सूरज नजर आ रहा है इतना सा नजर आ रहा है, इतना सा थोड़ा है, आपको कोई कानों में आवाज सुनाई नहीं देती। अल्ट्रासाउंड आपको नजर आ, अल्ट्रासाउंड सुनाई देती है? आप जो जो अल्ट्रासाउंड एक्सरे होता है वो अल्ट्रासाउंड एक्सरे नहीं होता, साउंड होते हैं वो, तभी तो उसका नाम है अल्ट्रासाउंड, आपको सुनाई नहीं देती। ऐसी कई साउंड्स हैं जो सुनाई नहीं देती, जानवरों को सुनाई देती है। तो पूर्ण ज्ञान आप इंद्रियों से नहीं ले सकते। अनुमान प्रमाण, आप अनुमान लगा लेते हो, स्पेकुलेट करते हो, और जी वहां पे आग है, वहां पे धुआं है, आग भी होगी, तभी तो धुआं है वहां पे, हो सकता है आग बुझ गई हो तब धुआं आ रहा हो सकता है किसी दूसरी चीज का ही धुआं हो, कोई केमिकल्स भी तो होते हैं, जैसे मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालो तो धुआं निकलता है, तो कोई आग नहीं है, कुछ नहीं है, धुआं निकल रहा है। तो ये स्पेकुलेशन भी काम नहीं करेगा, अनुमान प्रमाण भी काम नहीं करेगा आपको पूर्ण ज्ञान के लिए। पूर्ण ज्ञान के लिए काम करेगा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब अथॉरिटी जो कह रही है ऐसी चीज मानना है। माता ने कहा ये तेरा पिता है, मान लो बस। अब आप एक्सपेरिमेंट करते चलो जी मैं इसका डीएनए लगाऊंगा, पहले डीएनए ढूंढूंगा अपना डीएनए, तो पागल होना ना फिर। मान लो किसी को पिता का पता नहीं है और कह जी मैं तो बड़ा साइंटिस्ट बन गया हूं, सारी दुनिया के आदमियों को इकट्ठा करके उनका डीएनए टेस्ट करेगा क्या? पागल ही हो। मां के पास जाए, मां मेरे पिताजी को ना बताएगी, ये मेरे पिताजी खत्म होगी कहानी, आज तो नहीं चल रहा। पिता को भी एक्सपेरिमेंट करना है जी, पिता कौन है मेरे, पागल कौन चल रहा है। इसलिए शब्द प्रमाण अथॉरिटी, पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पहले जमाने में जो वेदों में लिखा हुआ है उसको मानते थे, खत्म बात। जो पति ने कहा इसलिए डाइवोर्स थोड़ा होते थे पहले, चाहे कैसा भी हो पति, स्वामी है मेरा, नाथ है, स्वामी है, कहां जाऊंगी मैं, तो इसको छोड़ के जाऊंगी कहां, फिर जाऊंगी कहां, यहां घर में एक बॉस है, ऑफिस में तो बॉस है, वो भी तो मेरा बॉस है, दो बॉस हैं, कहीं होंगे तो तीन तीन बॉस भी है, मुसीबत हो रही कि नहीं हो रही, नहीं मुसीबत हुई, ये मुसीबतें हैं लोग ये बता रहे हैं मुसीबतें हैं, हम इनको करते नहीं। नौकरी वाली चाहिए, मेरे तो पत्नी नौकरी वाली चाहिए, तो फिर आप बॉस नहीं बन सकते, उसके उसका बॉस ऑफिस में भी है, क्या करोगे फिर, डाइवोर्स नहीं होगा फिर। इसलिए समझ नहीं आती, प्रभुपाद जी साफ समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कहा मैं इंटेलिजेंस दे रहा हूं आपको, और ये सच बात है, अगर आपको इंटेलिजेंस चाहिए तो भक्तों का संग करो, नहीं तो बुद्धू संसार में आए, और जब जाओगे इस संसार से बुद्धू ही जाओगे। संसार में तो हर एक कोई बुद्धू आता है, हम भी जब मां के पेट से निकले थे तो माला नहीं थी, माँ से निकले थे, तो मां के पेट से निकले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, कोई भी मतलब रोते भी आते हैं संसार में चूतरों की तरह। लेकिन हां अगर गुरु की कृपा हो, भगवान की भक्तों की कृपा हो, तब जाओगे तो हंसते हुए जाओगे, जाओगे तो बहुत सुंदर तरीके से जाओगे, है ना। आते तो सारे रोते हुए हैं, आते तो सारे ही ऐसे, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए आविर्भाव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैष्णवों के समाज में, किरो भाव इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं ये व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हमें इंटेलिजेंस चाहिए, भक्तों का संग करो, पता लगेगा इंटेलिजेंस क्या है, जीवन का एम क्या है, ये कोई एम थोड़ा है, एम लेते भाग रहे हैं, क्योंकि वो भी जा रहे हैं इधर, मैं भी जा रहा हूं। चलो अभी तो समय होता जा रहा है, मैराथन का समय, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप बहुत ही जो है लिबरल हो, क्योंकि हमारे मंदिर में तो इतना बड़ा पहले लगा होता है सर्कुलर. यू शुड फिनिश एट दिस टाइम ऑल अराउंड मैराथन. आप पर्चा लगा होता है, आप बहुत लिबरल हो गए, आपने पर्चा नहीं लगाया. थैंक यू थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद. हरे कृष्णा, जय श्री राम.